कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पुराने नियम में पाई जाने वाली पुस्तक रूत का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस पुस्तक के अध्ययन से अवश्य आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। प्रभु की आशीषों को यूं ही प्राप्त करते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम सत्यवचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछले अध्ययन में रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और रूत की पुस्तक का समापन भी हुआ। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। रूत की पुस्तक में हमने देखा था कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक कुटुंबी छुड़ाने हारे ने रूत और उसकी भूमि को छुड़ाया और उसी के वंश से हमारा छुड़ाने हारा प्रभु यीशु उत्पन्न हुआ। वह मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और अब प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम उसी छुड़ाने हारे प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखेंगे जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से यरूशलेम, यहूदा और सामरिया में और दुनिया के छोर तक किए। तो आइए हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस पुस्तक के बारे में जानें, हम सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आज जब हम आपके जीवित वचन का फिर से एक बार मनन चिंतन करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, उसमें से हम सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों के जीवन को आप स्पर्श करें, उनके आत्मिक आंखों को, उनके हृदय और विचारों को, उनके एकाग्रतापन को खोल दें ताकि प्रभु जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों से बोलें और बातचीत करने पाए। विशेष प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बीमार से पीड़ित हैं, जो चिंता और तनाव में हैं, पारिवारिक कलह में हैं, जवान भाई बहन अपने जवानी की समस्याओं में हैं। पिताजी, आप उनकी सुधि लीजिए, उनकी सहायता कीजिए ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे आप पर भरोसा रख सकें, आप पर विश्वास रख सकें। इस समय हर एक श्रोता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस अध्ययन पर आपके आशीष मांगते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रेरितों के काम की पुस्तक को जिसे कभी कभी पांचवा सुसमाचार भी कहा जाता है, यह लुका रचित सुसमाचार का ही एक भाग है। इसका लेखक डॉक्टर लुका है, जैसा कि वह पद एक में उल्लेख करता है। सर विलियम रेमसे ने लुका के लेखों का आलोचनात्मक अध्ययन किया और कहा कि प्राचीन हो या आधुनिक, लुका सबसे महान इतिहासकार था। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक अनेक रूपों में असामान्य है। यह पुस्तक सुसमाचार, वृत्तांतों और पत्रियों का सेतु है, अर्थात पुल है। प्रेरितों के काम के पुस्तक के बिना नए नियम में एक खाई दिखाई देती है। जैसा कि डॉक्टर ह्यूस्टन ने कहा, यदि प्रेरितों के काम की पुस्तक हट जाए तो उसका स्थान लेने योग्य अन्य कोई पुस्तक नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु के विषय अंतिम तथ्य यह है कि वह फिर जी उठा। यही प्रेरितों के काम अध्याय एक में व्यक्त है। मार्कुस रचित सुसमाचार में यीशु की अंतिम घटना है स्वर्गारोहण, यह भी प्रेरितों के काम की पुस्तक में दी गई है। लुका रचित सुसमाचार में अंतिम तथ्य है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, जिसका आगमन प्रेरितों के काम अध्याय एक में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अंतिम तथ्य है मसीह का पुनः आगमन, जो प्रेरितों के काम अध्याय एक में है। मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि चारों सुसमाचार कीपा लगाकर उंडेले गए हैं और प्रेरितों के काम अध्याय एक के पात्र में भर गए हैं। चारों सुसमाचारों में जो महान सेवा का आदेश है वह भी प्रेरितों के काम की पुस्तक में पुष्ट किया गया है। मित्रों, प्रेरितों के काम की पुस्तक एक सीढ़ी बनाती है जिस पर पत्रियां रखी गई है। इन्हें साथ साथ पढ़ना ज्ञानवर्धक अनुभव है। प्रेरितों के काम की पुस्तक कलीसियाओं की स्थापना का इतिहास देती है तो पत्रियां उन्हें लिखे गए निर्देश हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक कलीसिया के आरंभ का अभिलेख है, कलीसिया की उत्पत्ति का वर्णन, उत्पत्ति की पुस्तक आत्मिक निकाय की उत्पत्ति का लेखा प्रस्तुत करती है जिसे हम कलीसिया कहते हैं। प्रेरितों के काम के पुस्तक का विषय या कुंजी अध्याय 1:8 है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे मित्रों, इस पुस्तक का विभाजन इस मुख्य पद के आधार पर ही किया गया है। प्रथम 7 अध्यायों में पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरितों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम के कार्यों का वर्णन है और 8-12 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह के कार्य जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से यहूदा और सामरिया में किए और शेष भाग पृथ्वी के छोर तक किए गए प्रेरितों के काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा किए। प्रेरितों के काम की पुस्तक पूरी नहीं है, इसका अंत पौलुस के किराए के घर के साथ ही हो जाता है जो उसने रोम में लिया है। इसका अंत पूर्ण नहीं है, क्यों? क्योंकि यह पुस्तक एक अनंत कहानी है। संभव है कि प्रभु के पास डॉक्टर लुका अब भी प्रेरितों के काम की पुस्तक लिख रहे हैं और हो सकता है कि वह आपके और मेरे कामों का भी लेखा लिख रहे हैं जो हम पवित्र आत्मा की सहायता से आज कर रहे हैं। यही मेरी और आपकी आशा होनी चाहिए। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक के कुछ विशेष गुण हैं। आइए हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता। प्रभु यीशु पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में चले गए हैं। पहले अध्याय में उसके स्वर्गारोहण का उल्लेख है, परंतु वह अब भी कार्य कर रहा है। उसने केवल स्थान बदला है या कहें मुख्यालय बदल दिया है। इस पृथ्वी पर उसका मुख्यालय कफरनहूम में था, अब उसका मुख्यालय पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ है। प्रभु यीशु मसीह प्रधान है, वह स्वर्ग में सुविधाजनक स्थान से कार्य कर रहा है। अब हम दूसरी बात देखते हैं, पवित्र आत्मा की प्रधानता। मसीह ने पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की। यह प्रतिज्ञा यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 बार की गई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 33 पद में, 7 अध्याय के 37 और 39 पद में, 14 अध्याय के 16 और 17 पद में, तब 20 अध्याय के 22 पद में, और यही प्रतिज्ञा प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में भी दी गई है। आप और मैं पवित्र आत्मा के युग में वास कर रहे हैं। इस युग का महान तथ्य है विश्वासियों में पवित्र आत्मा का अंतर्वास। अब तीसरी बात है कलीसिया का सामर्थ। कलीसिया में सामर्थ भरा हुआ है और निस्संदेह यह परमेश्वर के आत्मा का काम है, परंतु आज कलीसियाओं में आरंभिक कलीसिया का सामर्थ प्रकट नहीं है। क्यों? क्योंकि आरंभिक कलीसियाएं ऊंचे आत्मिक स्तर पर थी जो तब से आज तक किसी भी युग में प्राप्त नहीं किया गया है। फिर भी यह पवित्र आत्मा ही है जो कार्य करता है। जब किसी भी आराधना में प्रभु यीशु मसीह का महिमामय और सम्मान होता है तब हम इसे देखते हैं। चौथी बात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कलीसिया की प्रधानता। कलीसिया एक नई संस्था है, इसका आरंभ प्रेरितों के काम की पुस्तक से ही हुआ है। और पांचवी बात, स्थानों की प्रधानता। इस पुस्तक का आरंभ यरूशलेम से होता है और रोम में अंत होता है। सर विलियम रामसे ने डॉक्टर लुका द्वारा वर्णित किए गए एक एक स्थान का निरीक्षण किया और उन्हें सही पाया। छठवीं बात, व्यक्तियों की प्रधानता। डॉक्टर लुका 100 व्यक्तियों के नाम लिखते हैं, जन समूह का उल्लेख अलग है, और मेरे विचार में प्रथम शताब्दी के अंत तक संसार में लाखों विश्वासी थे। इन प्रथम 200 या 300 वर्षों में कलीसिया का विकास असीमित था, परंतु आज हमारा विकास कम हो गया है जैसा कि प्रभु कह चुका था। और सातवीं बात, पुनरुत्थान की प्रधानता। मेरे मित्रों, पुनरुत्थान सुसमाचार प्रचार का केंद्र है। आज अधिकांश कलीसियाओं में पुनरुत्थान का प्रचार वर्ष में एक बार अर्थात ईस्टर रविवार पर होता है। मैंने भी परमेश्वर के इस पुनरुत्थान के सुसमाचार को कई बार सुनाया है, और जबकि आरंभिक कलीसिया में मसीह यीशु का पुनरुत्थान कलीसिया और संदेश का केंद्र था, उसके बिना प्रचार नहीं किया जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंतिकोस्त के दिन पत्रस के प्रचार का विषय था मसीह यीशु का पुनरुत्थान। उसने कहा कि उस दिन जो हो रहा था उसका मुख्य कारण था कि मसीह यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने और स्वर्ग में है और उसने अपने पवित्र आत्मा संसार में भेज दिया है। यह सब पुनरुत्थान के कारण ही हो रहा था। आप देखेंगे कि पौलुस के प्रचार का केंद्र भी पुनरुत्थान ही था, अर्थात जी उठा। अनेक मनुष्य यहाँ तक कि प्रचारक भी नाना प्रकार के वरदानों पर निर्भर करना चाहते हैं। अतः मैं आपको एक वरदान सुझाता हूँ, मसीह यीशु का पुनरुत्थान आरंभिक कलीसिया में प्रत्येक रविवार अर्थात हरेक रविवार उनके लिए ईस्टर होता था, पुनरुत्थान की घोषणा का दिन होता था कि वह जी उठा है। सब जगह पुकारा जाता था, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 64 पद में देखते हैं। अब देखें आठवीं बात, पुस्तक के प्रथम भाग में पत्रस और अंतिम भाग में पौलुस की प्रधानता दर्शाई गई है। अन्य प्रेरितों का नाम नहीं लिया गया है। मेरे विचार में इन दो पुरुषों की सेवा पर विशेष ध्यान देने में परमेश्वर के पास अति उचित कारण ही रहे होंगे। इसका मानवीय कारण भी है। मेरे विश्वास में डॉक्टर लुक इन दोनों की सेवा से परिचित थे, वह पौलुस के सहायक भी थे। कुछ लोगों का विचार है कि पत्रस और पौलुस में मतभेद था। मैं स्पष्ट कहूं तो मेरे विचार में लुका पत्रस और पौलुस सदैव ही अच्छे संबंधों में नहीं थे और अधिक बातें नहीं करते थे। इस ऐतिहासिक पुस्तक का सही नाम रखना सदा ही समस्या रहा है। मेरे प्रियो, हमारी बाइबल में इसे प्रेरितों के काम की पुस्तक कहा गया है। कोडेक्स वेटिकेनस भी इसे प्रेरितों के काम की पुस्तक कहता है। रॉबर्ट लीने ने इसे स्वर्गवासी एवं महिमापूर्ण प्रभु के काम कहा है। बंधु शीर्षक हैं कार्यों का वचन। मेरे विचार में इसकी कुंजी हमें अध्याय एक के पहले दो पदों में ही दी गई है। इसके आधार पर मैं कहूंगा आत्मा के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के काम। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्याय एक में आए। इसका विषय है पवित्र आत्मा के आगमन की तैयारी। मेरे मित्रों, जैसा मैंने प्रस्तावना में कहा था कि मेरे विचार में इस पुस्तक का शीर्षक होना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से मसीह यीशु के काम। पहले 7 अध्याय मसीह यीशु के कार्यों को प्रकट करते हैं जो उसने यरूशलेम में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से दिए, और पहला अध्याय पवित्र आत्मा के आगमन की तैयारी का है जिसमें संक्षिप्त प्रस्तावना है, और यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिनों का विवरण उसका स्वर्ग्रहण और फिर से आने की प्रतिज्ञा है। इसके बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रेरितों की प्रतिज्ञा तथा यहूदा के स्थान पर एक नए प्रेरित का चुनाव है। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम एक अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, पहली पुस्तिका लुका रचित सुसमाचार भी थियोफिलुस को भेजा गया था। थियोफिलुस का अर्थ है परमेश्वर का प्रेमी। मैं इस विचार से सहमत नहीं कि यहाँ थियोफिलुस का अर्थ है कोई भी प्रेमी। मित्रों, यह तो स्पष्ट है कि लुका का एक परिचित जन थियोफिलुस था और उसका नाम उचित ही था कि वह परमेश्वर का प्रेमी था। लुका रचित सुसमाचार में वे सब बातें हैं जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, और प्रेरितों के काम की पुस्तक में वह अब भी कर रहा है और सिखा रहा है। वह आज भी कर रहा है। मेरे मित्रों, वह आज भी सिखा रहा है, और मैं तो कहूंगा कि वह इस कार्य को तब तक करता रहेगा जब तक कि वह अपनों को इस संसार से उठा ना ले। मेरे मित्रों, उस दिन तक जब तक कि वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। इससे स्पष्ट होता है क्योंकि यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया तो उसने शिक्षा देना बंद नहीं की, परंतु अब अधिक सुलभ स्थान परमेश्वर के दाहिने हाथ से वह पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है। जिस प्रकार सेना में आज्ञाएं ऊपर से नीचे की ओर चलती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है। पवित्र आत्मा प्रेरितों के माध्यम से और आज हमारे अपने अपने स्थानों में आपके और मेरे द्वारा काम करता है। यह एक असाधारण कथन है। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान के बाद यीशु की 40 दिवसीय सेवा, हम देखते हैं कि डॉक्टर लुका यहाँ अपने नियतकालीन वाक्यों में से एक का उपयोग करता है जो पद 4 तक चलता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, कष्टों और मृत्यु के पश्चात यीशु ने अनेक अचूक प्रमाण के द्वारा अपने आप को जीवित प्रकट किया, अर्थात लोगों के बीच में अपने आप को दिखाया। पुनरुत्थान के पश्चात यीशु के 10 प्रकटीकरण व्यक्त किए गए हैं, अर्थात उसने 10 बार अपने आप को दिखाए, इसके बारे में लिखे गए हैं। उसके पुनरुत्थान के पश्चात की सेवा जो उसके प्रकटीकरण में व्यक्त है, आज विश्वासियों के जीवन पर सुसमाचार में विहित उसकी 3 वर्षीय सेवा से अधिक प्रभाव डालती है। मेरे पास एक छोटी पुस्तक है जिसका नाम एम्प्टी टूम है, अर्थात खाली कब्र। इस पुस्तक में उसके पुनरुत्थान के पश्चात की सेवा का वर्णन किया गया है। हम 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस ने लिखा है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा ना जानेंगे। मेरे प्रियो, आज आप और मैं उसे ऐसा जानते हैं जैसा वह 2010 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विचरण करता था। हम उसे एक महिमामय मनुष्य के रूप में जानते हैं। वह इस पल स्वर्ग में है, इस क्षण स्वर्ग में है, और वह वास्तव में है। कलीसिया प्रायः इस तथ्य को अनदेखा करती है, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। अभी हाल ही में मुझे एक व्यक्ति का पत्र प्राप्त हुआ जिसका कहना था कि वह आजीवन कलीसिया का सदस्य रहा है। उसने सब निर्धारित संस्कार पूरे किए हैं और उसे विश्वास था कि वह एक विश्वासी है, परंतु वचन सुनकर उसे बोध हुआ कि वह मसीह यीशु को नहीं जानता था। उसकी अविश्वसनीय खोज थी कि यीशु 2010 वर्ष पूर्व ही पृथ्वी पर नहीं रहा है। वह आज भी जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। वह जीवित प्रभु के पास आया और उसे ग्रहण किया। मेरे मित्र, यह कैसी अद्भुत बात है! यीशु ने अपने आप को अनेक बार अचूक प्रमाणों के साथ प्रकट किया। आज विश्वासियों की समस्या या तथ्य उनका अपना अविश्वास है। तथ्य तो यही है, क्या नेपोलियन था? जी हाँ। क्या उसने वाटरलू का युद्ध किया? जी हाँ। मेरे पास इसके प्रमाण इतने नहीं जितने यीशु के पुनरुत्थान के हैं। सच तो यह है कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रमाण इससे 10,000 गुना अधिक हैं। फिर भी आज लोगों का कहना है कि वे यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। समस्या कहाँ है? समस्या है अविश्वासी मन। मनुष्य में आदम की स्वाभाविक मानसिकता है कि परमेश्वर से दूर भागे। मनुष्य परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो समस्या आपके साथ भी है, परमेश्वर के वचन के साथ नहीं है। मेरे मित्रों, उसने तो अनेक अचूक प्रमाण के द्वारा अपने आप को प्रकट किया कि वह जीवित है, स्वयं को जीवित सिद्ध कर दिया। यदि आप में सच्ची जिज्ञासा हो तो आप जान सकते हैं। समस्या तो यह है कि आप जानना ही नहीं चाहते हैं। समस्या आपके मस्तिष्क में नहीं, आपकी इच्छा की है। मेरे प्रियो, मुझे पुनरुत्थान के बारे में कुछ कहने की अनुमति दें। मेरे विचार में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 32 को विकृत कर दिया गया है। मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ध्यान दीजिए, वह ऊंचे पर कैसे चढ़ाया गया? वह पुनरुत्थान में ऊंचे पर चढ़ाया गया था। मेरे प्रियो, वह मृतकों में से ऊंचा उठाया गया था। यही शुभ संदेश है। चाहे आप यीशु के बारे में कुछ भी कहें या उसे कैसा भी आकर्षक कहें, संदेश यही है कि वह मृतकों में से ऊंचा उठाया गया, अर्थात वह जी उठा है। बहुत लोग यीशु की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं क्योंकि पुनरुत्थित मसीह का प्रचार नहीं किया जा रहा है। प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखिए, मसीह यीशु के पुनरुत्थान पर कैसा बल दिया गया है। मेरे प्रियो, आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी कई ऐसी समस्याएं हैं। हो सकता है कि अविश्वास की समस्या। प्रभु यीशु मसीह निश्चय ही इस पृथ्वी पर 2010 वर्ष पहले रहा। उसने हमारे और आपके पापों के लिए अपनी जान दिए। वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से वह जी उठा। इस संसार में बहुत से विद्वान, ज्ञानी, महान व्यक्ति हुए, वे भी मर गए लेकिन कभी जीवित नहीं हुए। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। सिर्फ जीवित ही नहीं, वह 40 दिन तक जी उठने के बाद भी अपने शिष्यों में प्रकट होता रहा। शिष्यों ने उसे देखा और हम आगे देखेंगे कि उनके देखते देखते वह स्वर्ग में उठा लिया गया। मेरे मित्रों, इससे बड़ी गवाही आप क्या चाहते हैं? क्या आज आप भी प्रभु यीशु पर संदेह करते हैं कि वह था या नहीं? आज आपको चुनाव करना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मर गया, आपके लिए जी उठा, आपका वह उद्धार करता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र आत्मा के माध्यम से, प्रेरितों की काम की पुस्तक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मसीह यीशु जीवित है, वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही नई बातों को अपने जीवन में सीखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं है, परंतु वह जीवित है, आज भी स्वर्ग राज में परमेश्वर की दाहिने विराजमान है। वह मेरे लिए और आपके लिए विनती करता है और चाहता है कि हम सब उस पर विश्वास करें, उद्धार का आनंद प्राप्त करें और अपने जीवन में उसको आदर दें। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वह आपके जीवन में शांति, आनंद, प्रेम भर दे? यदि हाँ, तो आज ही आप निर्णय लें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने जीवन में इस वचन को सुनकर निर्णय ले रहे हैं। पिताजी, आप उनकी सहायता कीजिए ताकि वे इस बात को और भी गहराई से अपने जीवन में विश्वास कर सकें कि आप जीवित हैं। आप मुर्दों के परमेश्वर नहीं, परंतु जीवितों के परमेश्वर हैं। आप हमारे मध्य में हैं, आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें नया जीवन देना चाहते हैं। हमारे भाई बहनों की सहायता करें, उनके तकलीफों से, उनके हर एक कारोबारों में से, हर एक उनकी जरूरतों में से आप उनकी मदद करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमसे बात किया है और इस बात को प्रकट किया है कि आप हमारे जीवित प्रभु हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो जीवित है, मांगते हैं। आमीन।
राजाओं का राजा है, वो प्रभु उनका प्रभु जाओ।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।